आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीपिका मिश्रा। पहले मुख्य समाचार। विश्व सकल सेल दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस बीमारी पर काबू पाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां तेज, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर में भव्य आयोजन करने के दिए निर्देश। गड़बड़ी की आशंका पर यूजीसी नेट जून 2024 निरस्त, शिक्षा मंत्रालय ने दिए सीबीआई जांच के आदेश। और आंधी बारिश से प्रदेश के कई जिलों में भीषण गर्मी से मिली राहत, मौसम विभाग ने जताया अनुमान, 23 से 25 जून के बीच पूरे प्रदेश में दस्तक देगा मॉनसून। अब समाचार विस्तार से। विश्व सिकल सेल दिवस के मौके पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार इस बीमारी पर काबू पाने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वे इस अनुवांशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता पैदा करने जैसे अन्य पहलुओं पर भी काम कर रहे हैं। सिकल सेल रोग शरीर में रक्त को प्रभावित करने वाली बीमारी है। इस बीमारी के कारण रक्त कोशिकाओं के भीतर हीमोग्लोबिन का स्तर प्रभावित होने लगता है। लखनऊ के एसजीपीजीआई के हेमटोलॉजी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉ संजीव यादव ने सिकल सेल रोग पर जानकारी देते हुए कहा कि भारत के ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में इस बीमारी का प्रभाव ज्यादा देखा जाता है, इससे बचाव के लिए जागरूकता जरूरी है।
सिकल सेल डे सबसे कॉमन जेनेटिक रक्त संबंधी बीमारी है और इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ सिकल सेल पेशेंट की कंट्री है, जिसमें कि मेनली यह ट्राइबल पॉपुलेशन में ज्यादा है। इस बीमारी को खत्म करने का सरकार ने 2047 तक संकल्प लिया है और इसके लिए बीमारी के अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। सिकल सेल में यूजुअली पेशेंट्स जो होते हैं उनको ज्वाइंट्स में पेन होना स्टार्ट होता है, इसको हम वैसो ऑक्लूसिव क्राइसिस बोलते हैं। आगे चल के उनके बाकी ऑर्गन्स भी धीरे धीरे अफेक्ट होने लगते हैं, स्पेशली किडनी की प्रॉब्लम, जॉइंट्स की प्रॉब्लम एंड आंखों की प्रॉब्लम सबसे कॉमन होती है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश में कल भव्य आयोजन के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के खंड विकास अधिकारियों को योग दिवस पर वृहद कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। वहीं योग दिवस से पहले प्रदेश भर में योग सप्ताह के अंतर्गत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। अमरोहा में योग सप्ताह के अंतर्गत शासन द्वारा कल संयुक्त जिला अस्पताल में योग सत्र का आयोजन किया गया। इसमें जिलाधिकारी समेत अन्य प्रशासनिक और चिकित्सा अधिकारियों और कर्मचारियों ने योगाभ्यास किया। वहीं बदायूं में योग सप्ताह के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य योग विषय पर सेमिनार आयोजित किया गया। फतेहपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से 409 इंटर कॉलेज और लगभग 76 डिग्री कॉलेजों में योगाभ्यास कराया जा रहा है। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में भी योग सप्ताह के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे विभिन्न प्रतिनिधियों ने योग दिवस के अवसर पर योग प्रशिक्षकों से बात की और योग से होने वाले लाभ के बारे में जानकारी ली।
योग हमारे जीवन को सुखमय बनाने का एक सुंदर विकल्प है। जब हमारी आत्मा, शरीर और मन सुदृढ़ होकर के एक दिशा में काम करते हैं तब हमारे जीवन में योग घटित होता है।
योग के जो साधक हैं उनके अंदर सबसे पहले जो भारी भरकमता है वो धीरे धीरे सरलता के साथ हल्के होने शुरू हो जाते हैं। उनके चेहरे पर प्रसन्नता के भाव रहते हैं। उनके जो मल है उनका निष्कासन शुरू हो जाता है। तो इसलिए योग अभ्यास आपके शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक स्तर को स्वस्थ रखने के लिए आप नित्य प्रति योग अभ्यास करें।
आप सभी लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि रोजाना योग करें और योग करेंगे तो निरोग रहेंगे, आप खुश रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे और योग से बहुत फायदा है, योग सबको करना चाहिए।
दसवां हमारा ये लगातार मनाने की हम लोगों की इस बार की भी तैयारी शुरू हो चुकी है और हम लोग डिपार्टमेंट में इसके लिए जो है वो पूरी तरीके से जागरूक हैं। डिपार्टमेंट में इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को बहुत कामयाबी के साथ सफलतापूर्वक हम लोग मना पाएं उसके लिए 21 जून 2022 से लगातार अखंड योग का एक सेशन हम लोगों का चल रहा है।
शिक्षा मंत्रालय ने देश के 317 शहरों में 18 जून को आयोजित हुई यूजीसी नेट रद्द कर दी है। मंत्रालय ने कल कहा कि परीक्षा में गड़बड़ी की जानकारी मिलने के बाद यह फैसला किया गया है और सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं। परीक्षा जल्द ही फिर से आयोजित की जाएगी। मंत्रालय के मुताबिक यूजीसी को राष्ट्रीय साइबर अपराध इकाई से कुछ सूचनाएं मिली थी जो यह संकेत दे रही थी कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। इस परीक्षा में 11,21,000 से अधिक पंजीकृत उम्मीदवारों में से करीब 81% उम्मीदवार उपस्थित हुए थे। यूजीसी नेट हर साल दो बार जून और दिसंबर में आयोजित किया जाता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। पूर्वांचल समेत प्रदेश के कई अन्य जिलों में बीती रात से आंधी और बारिश का दौर शुरू होने से लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के कई जिलों में बूंदाबांदी जारी रहेगी। कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के मौसम वैज्ञानिक डॉ SN सुनील पांडे ने बताया कि आज से पूर्वी हवाएं उत्तर प्रदेश में दस्तक देंगी। इससे मौसम में बदलाव होगा और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। प्री मानसून की बारिश 22 जून से शुरू होने की उम्मीद है। 23 से 25 जून के बीच मानसून पूरे उत्तर प्रदेश में दस्तक दे देगा। मानसून के सक्रिय होते ही तेज बारिश की होने की संभावना है। हालांकि प्रदेश के पश्चिमी जिलों में अगले 2-3 दिनों तक भीषण गर्मी जारी रह सकती है। लखनऊ मौसम केंद्र की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक लखनऊ, बाराबंकी, हरदोई, कानपुर शहर, कानपुर देहात, लखीमपुर खीरी, झांसी, आगरा समेत कई इलाकों में अगले 3 दिनों तक हीट वेव का कहर जारी रहेगा। अधिकतम तापमान 40 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का लाइसेंस 4.5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। अब तक DGCA ने इस एयरपोर्ट को 6 महीने का लाइसेंस जारी किया था। एयरपोर्ट के निदेशक विनोद कुमार ने जानकारी दी कि अब भी रोजाना लगभग 4,000 यात्री इस एयरपोर्ट से आवागमन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उड़ानों की संख्या में कोई कमी नहीं की गई है। उधर लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अब टर्मिनल 3 से संचालित होंगी। 18 जून की रात 12 बजे के बाद से सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को टर्मिनल 3 पर शिफ्ट कर दिया गया है। एयरपोर्ट प्रशासन ने इंटरनेशनल उड़ानों को 11 जून को टर्मिनल 3 पर शिफ्ट करने का आदेश दिया था, लेकिन उस समय इस आदेश को अमल में नहीं लाया जा सका था। एयरपोर्ट प्रशासन के अनुसार अब सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान टर्मिनल 3 से ही होंगी। वहीं वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विकसित करने के लिए भी मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हवाई अड्डे को विकसित करने के भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने पर आभार जताया है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने कहा कि 2,869 करोड़ रुपए की लागत से इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विकास काशी सहित पूरे उत्तर प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा। देश में नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। भारतीय न्याय संहिता 2023 स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं को अनावश्यक उत्पीड़न से बचाता है। नए आपराधिक कानूनों में एक पंजीकृत चिकित्सक को चिकित्सीय लापरवाही के लिए 2 साल तक की कैद और जुर्माने से दंडित करने का प्रावधान किया गया है। किसी भी चिकित्सा प्रक्रिया को निष्पादित करते समय जल्दीबाजी या लापरवाही से मौत के मामलों में जिम्मेदार चिकित्सकों के लिए BNS कम सजा का प्रावधान करता है। BNS की धारा 51 के अनुसार चिकित्सक को बिना किसी देरी के आरोपी की जांच रिपोर्ट जांच अधिकारी को भेजनी होगी। दुराचार के मामलों में पीड़िता की मेडिकल जांच की रिपोर्ट पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर को 7 दिनों की अवधि के भीतर जांच अधिकारी को भेजना अनिवार्य होगा। BNS की धारा 52 में नमूने के दूषित होने और उसकी उपयोगिता में कमी की संभावना को रोकने के लिए बिना किसी देरी के नमूने को जांच के लिए भेजने पर जोर दिया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व सिकल सेल दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस बीमारी पर काबू पाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां तेज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर में भव्य आयोजन करने के दिए निर्देश। गड़बड़ी की आशंका पर यूजीसी नेट जून 2024 निरस्त। शिक्षा मंत्रालय ने दिए सीबीआई जांच के आदेश। और आंधी बारिश से प्रदेश के कई जिलों में भीषण गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने जताया अनुमान, 23 से 25 जून के बीच पूरे प्रदेश में दस्तक देगा मॉनसून। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ।